दिन भर 13 दिसंबर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। भारी लड़ाई के बाद सीरियाई सेनाओं का अलेप्पो शहर पर करीब करीब कब्जा। डोनाल्ड ट्रंप ने नए विदेश मंत्री के नाम पर मोहर लगाई और देखेंगे किस तरह भारत के बाहर भी नोटबंदी से हो रही है परेशानी।
मेरी नज़र में कोई ऐसा नहीं आया कि कोई ऐसा सिस्टम हो कि यहाँ पे जो इंडियन बैंक्स हैं उनके यहाँ पे कोई उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो इंडियन करेंसी को लेके कैसे करना है उनको, तो उस वजह से काफी लोग परेशान हैं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अमरेश द्विवेदी से। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अलेप्पो में सीरियाई सेना के हमले में एक इमारत में लगी आग में दर्जनों बच्चों के फंसे होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र की बच्चों से जुड़ी संस्था यूनिसेफ ने परिवार से बिछड़े इन बच्चों को तुरंत सुरक्षित जगह पर ले जाने की अपील की है। ये बच्चे उन हजारों लोगों में से हैं जो विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में फंसे हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार अधिकारी जॉन इग्लैंड ने कहा है कि उन्हें सीरिया में निहत्थे नागरिकों के संहार संबंधी विस्तृत रिपोर्ट मिली है। उन्होंने कहा कि इस नरसंहार को सीरियाई सरकार से जुड़े लड़ाकों ने कथित रूप से अंजाम दिया है और मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ऐसी रिपोर्टें हैं कि 80 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। इग्लैंड ने कहा कि इसके लिए सीरिया की सरकार और रूस को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जर्मनी और फ्रांस के नेताओं ने कहा है कि वे चाहते हैं कि रूस के खिलाफ लगे प्रतिबंधों की मियाद, यूक्रेन में हस्तक्षेप और मिन्स्क युद्ध विराम संधि को लागू करने में प्रगति न होने की वजह से बढ़ाई जाए। बर्लिन में जारी एक संयुक्त बयान में जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने कहा कि इस बारे में वो गुरुवार को होने वाली यूरोपीय परिषद की बैठक में नेताओं का समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। एंगेला मर्केल ने कहा, हमने यूक्रेन के हालात और मिन्स्क समझौते और इसे अमल में लाने में हो रही देरी के बारे में बात की, इसलिए ये जरूरी हो गया है कि रूस के खिलाफ लगे प्रतिबंधों को आगे बढ़ाया जाए। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। जर्मन चांसलर ने यह भी कहा कि प्रतिबंधों को हटाने से पहले ये आवश्यक है कि मिन्स्क समझौता पूरी तरह लागू किया जाए। गौरतलब है कि पूर्वी यूक्रेन में पिछले 2 साल से जारी संघर्ष में 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो एक्सॉन मोबिल के मुख्य कार्यकारी रेक्स टिलरसन को देश के अगले विदेश मंत्री के रूप में नामांकित करेंगे। ये घोषणा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टिलरसन के नज़दीकी संबंधों से जुड़ी चिंता के बीच की गई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि रेक्स टिलरसन दुनिया के सबसे काबिल डील मेकर्स में से एक हैं, जो कि अमेरिका की कई सालों की गलत दिशा में चल रही विदेश नीति को पलटने में सफल रहेंगे। हालांकि टिलरसन के नामांकन का सीनेट में विरोध भी हो सकता है, जहां रूस के साथ उनकी पुरानी दोस्ती की निंदा होती रही है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। केरल के एक सिनेमाघर में राष्ट्रगान के दौरान खड़े न होने पर 12 लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। पूरी जानकारी दे रही हैं वंदना।
राष्ट्रगान के दौरान सम्मान में खड़े न होने की घटना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हुई। गिरफ्तारी का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिनेमाघर मनोरंजन के लिए होते हैं और राष्ट्रवाद को जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता है। हालांकि गिरफ्तार लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले निर्देश दिया था कि सिनेमाघरों में फिल्म के प्रदर्शन से पहले राष्ट्रगान बजाना और उस दौरान दर्शकों का खड़ा होना जरूरी है। रविवार को चेन्नई के एक सिनेमाघर में दक्षिण पंथी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगान के दौरान खड़े न होने पर कई लोगों की पिटाई कर दी थी।
इटली की एक अदालत ने एक जहाज पर सवार कम से कम 700 प्रवासियों की मौत के लिए जहाज के कप्तान को जिम्मेदार ठहराया है। सिसली की एक अदालत में जज ने ट्यूनिशियाई नागरिक और जहाज के कप्तान मोहम्मद अली मलेक को 18 साल के कारावास की सजा सुनाई है। यूरोप के प्रवासी संकट से जुड़े हादसों में इसे सबसे दुखद हादसा माना जाता है। ये जहाज पिछले साल अप्रैल में लीबिया से यूरोप के लिए रवाना हुआ था और जहाज के कप्तान मलेक जीवित बचे 28 लोगों में से एक हैं। अदालत को जानकारी दी गई है कि अली मलेक जहाज चलाना नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने यात्रियों से भरे हुए जहाज की कमान संभाली थी। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिका पर परमाणु करार के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। पिछले 4 बरस से जारी भीषण युद्ध के बाद सीरियाई सेना एलेप्पो शहर पर अब पूरी तरह कब्जा करने में लगभग कामयाब हो गई है। राष्ट्रपति अल असद का समर्थन कर रही रूसी फौज ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में पूर्वी एलेप्पो के 11 और जिलों को आजाद करवा लिया गया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने लड़ाई के दौरान आम लोगों के उत्पीड़न पर चिंता जताई है। आप जानते ही हैं कि पश्चिमी देश सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहे हथियारबंद विद्रोहियों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि रूसी सेनाएं राष्ट्रपति असद की सेनाओं के साथ हैं। विभिन्न बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार सुनिए, राजेश जोशी से।
सीरियाई फौजों की लगातार बढ़त की खबर आते ही सरकारी टेलीविजन पर जश्न मनाते लोग नजर आए। शहर के जिस इलाके में लड़ाई चल रही है वो उजड़े दयार में बदल चुका है। इमारतें ढह गई हैं और सड़कें खुदी हुई हैं। आसमान से दिन रात बम के गोले बरसते रहते हैं। पर जैसे जैसे सीरियाई फौजें आगे बढ़कर विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों को नियंत्रण में ले रही हैं, वैसे वैसे वहां फंसे हुए हजारों आम लोग भाग भाग कर सरकारी कब्जे वाले इलाकों में आ रहे हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों ने बेहद खुशी जाहिर की है। विद्रोही लड़ाकों को पीछे हटते देख ये बच्चे भी नारे लगाते और खुशियां मनाते नजर आए। मगर पूर्वी एलेप्पो के एक कोने में सिमट चुके विद्रोही लड़ाकों के साथ अब भी भारी संख्या में आम लोग फंसे हुए हैं। युद्ध के मैदान में बदल चुके इस शहर में आम लोगों को यातनाएं दिए जाने की खबरों पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने चिंता जताई है। उनके प्रवक्ता फरहान हक ने कहा है कि लोगों को पेश आने वाली तकलीफें युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकती हैं।
It's horrifying and we've been warning for months of the need to have a cessation of fighting so that both that we could get aid into
बहुत ही डरावना मंजर है। इसके बारे में हम महीनों से चेतावनी देते रहे हैं। हम कहते रहे हैं कि लड़ाई बंद की जानी चाहिए ताकि एलेप्पो के उन इलाकों में मदद पहुंचाई जा सके जहां लोगों ने खाना नहीं खाया है या उन्हें दवाइयां नहीं मिल रही हैं। वहां से लोगों को निकाला जाना चाहिए। हमने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि लोगों को जिस तरह की परेशानियां हो रही हैं वो युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकती हैं। हम अब भी युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऐसी बातचीत कई बार असफल साबित हुई है। इसके लिए हम उनको जिम्मेदार ठहराते हैं जो लड़ रहे हैं और एलेप्पो पर फौजी विजय हासिल करना चाहते हैं।
ये थे संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के प्रवक्ता फरहान हक के शब्द। बीबीसी संवाददाता सारा रेंसफोर्ड के मुताबिक रूसी फौज ने एक बयान जारी करके कहा है कि सीरियाई फौज अब एलेप्पो शहर के 98% इलाके पर नियंत्रण हासिल कर चुकी है और विद्रोही लड़ाके अब सिर्फ 3 किलोमीटर के दायरे में सिमट चुके हैं। रूस ने कहा है कि उसके अधिकारियों ने 44,000 बच्चों सहित 110,000 आम लोगों को पूर्वी एलेप्पो से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है और 7,000 लोग अपने घरों में पहुंच चुके हैं। एलेप्पो में चल रही जंग के बारे में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस ने कहा है कि वहां ऐसी कोई जगह नहीं है जिसे सुरक्षित कहा जा सके। संगठन ने कहा है कि गहराते मानवीय संकट को टालने का ये आखिरी मौका है।
एलेप्पो पर सीरियाई सेना का करीब करीब कब्जा। और अब कुछ खबरें भारत से। एनआईए कोर्ट ने यासीन भटकल और 5 दूसरे प्रतिवादियों को 2013 में हैदराबाद के दिलकुश नगर ब्लास्ट मामले में दोषी ठहराया है। इस मामले में अदालत सजा का ऐलान 19 दिसंबर को करेगी। ये पहला मौका है जब किसी मामले में इंडियन मुजाहिदीन के किसी भी सदस्य को दोषी पाया गया है। 21 फरवरी 2013 को हुए इस ब्लास्ट में 18 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 131 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
मोहम्मद अहमद सिद्दी बापा का नाम कोई नहीं पहचानेगा कि ये कौन है, हालांकि वो असली नाम है जिसको दुनिया यासीन भटकल के नाम से जानती है। इसका कारण यही है कि किसी पुलिस अफसर को मोहम्मद अहमद सिद्दी बापा का नाम याद रखना मुश्किल लगा और उन्होंने यासीन के नाम के साथ उनके शहर का नाम लगा दिया। बहरहाल यासीन और उनके 4 साथियों को आज हैदराबाद की एनआईए कोर्ट ने दिलसुख नगर के बम विस्फोट कांड में अपराधी ठहराया। उनको कितनी सजा मिलेगी उसका फैसला दिसंबर 19 को पता चलेगा। एनआईए का इल्जाम ये था कि यासिन और उनके साथियों ने हमले की सारी तैयारी इंटरनेट का इस्तेमाल करके की और प्रॉक्सी सर्वर भी इस्तेमाल किया था जिससे उनकी असली पहचान को छुपा सकें। करीब 450 गवाहों को एनआईए ने कोर्ट के सामने पेश किया गया और करीब 250 दस्तावेज भी पेश किए गए। कर्नाटका के पूर्व इंटेलिजेंस आईजीपी गोपाल हसूर ने बीबीसी को बताया,
कन्विक्शन इज अ विंडिकेशन ऑफ द पुलिस इन्वेस्टिगेशन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस पीपल इन द
जांच एजेंसियों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा प्रोत्साहन है। आईएम एक देसी आतंकवादी संगठन है और उसको ये एक बड़ा धक्का लगा है। ये दोष सिद्धिक ये बताता है कि हमारे देश में एक मजबूत आपराधिक न्याय है और जो लोग कानून के खिलाफ जाते हैं उनको सजा मिलती है। ये थे गोपाल हसूर के शब्द। यासिन और मोहम्मद अहमद सिद्दी बापा के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे देश के कई शहरों में दर्ज किए गए हैं। सिद्दी बापा कर्नाटक के तटीय शहर भटकल के सामान्य परिवार के हैं जिनकी जिंदगी जब बदली जब उन्होंने उनके रिश्तेदार रियाज शाह भंडारी और इकबाल शाह भंडारी के साथ दोस्ती हुई। रियाज के नाम के साथ भी पुलिस अधिकारियों ने भटकल लगा दिया जैसे इकबाल और यासिन के नामों के साथ। लेकिन यासिन का नाम पहले वक्त आतंकी हमलों में 2008 से आना शुरू हुआ और उसके बाद बहुत सारे मुकदमे उनके खिलाफ अन्य राज्यों में दर्ज किए गए हैं। थोड़े मुकदमों की जांच एनआईए कर रही है और थोड़े राज्य सरकारों। यासिन पुलिस की हिरासत में अगस्त 2013 में आए हैं। तो क्या आज के दोषा सिद्दीक के बाद नौजवान लोग इंडियन मुजाहिदीन जैसे संस्थाओं में शामिल होंगे? हमने ये सवाल गोपाल हसूर से पूछा। उन्होंने कहा,
The motivation for terrorism, probably the convictions and all really are not.
इस दुष्टसिद्धि से कोई प्रेर नहीं होने वाला है क्योंकि ज्यादातर इस तरह के आतंकी संस्थाओं में जो लोग जाते हैं उनका दिमाग धोया जाता है। ये थे गोपाल हसूर के शब्द। बहरहाल दिसंबर 19 को किस तरह की सजा कोर्ट देगी उसका कुछ तो असर नौजवानों पर पड़ेगा ही, लेकिन दुख की बात यही होगी कि भटकल जैसे शहर के लोगों पर इन मुकदमों में निर्णय आने से कुछ असर नहीं पड़ेगा क्योंकि भटकल के लोगों का मानना है कि उनके शहर का नाम बदनाम कर दिया गया है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
नोटबंदी का 35वां दिन और लोगों की परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। 3 दिनों की छुट्टी के बाद आज बैंक खुले लेकिन अभी भी एटीएम के बाहर लाइनें हैं, कई एटीएम्स में पैसा नहीं है, सरकार दबाव में है और विपक्ष नोटबंदी को गरीबों पर हमला और अमीरों को फायदा पहुंचाने वाला कदम कहकर इसे आम लोगों तक ले जा रहा है। विनीत खरे की रिपोर्ट।
16, 17 days to go. If the entire 15 lakh crore comes back, what have you done this for? There is a Hindi proverb. Sorry for my pronunciation.
ये थे पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए लोगों से जो 50 दिन मांगे थे उनके खत्म होने में 16-17 दिन ही बचे हैं और अगर बैंकिंग सिस्टम में पूरे 15 लाख करोड़ वापस आ जाते हैं तो सवाल ये कि आपने ये सब किसके लिए किया। इसके लिए हिंदी कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया।
Banks are supposed to ration the money and give it to you and me.
चिदम्बरम कह रहे थे बैंकों का काम है कि वो सोच समझकर आप और हम जैसे लोगों को पैसे बांटे। किसी के पास 34 करोड़ रुपए के नए नोट कैसे आ जाते हैं? ये साल का सबसे बड़ा घोटाला है और इसकी जांच होनी चाहिए। ये पूर्ण अव्यवस्था है, तभी मनमोहन सिंह ने इसे भारी अव्यवस्था करार दिया था। ये थे पी चिदम्बरम। नोटबंदी पर सियासत जारी है, लोग नकद की तलाश में एक एटीएम से दूसरे एटीएम में भटक रहे हैं, बैंकों में नकद नहीं है, मजदूरों का काम घट गया है, दुकानदारों की बिक्री कम हो गई है। कांग्रेस और विपक्ष का आरोप है कि नोटबंदी से समाज का गरीब तबका सबसे परेशान हुआ है और अमीरों को फायदा पहुंचा है। लोग अपने ही पैसे को बैंक से निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आत्महत्या तक कर रहे हैं। सरकार ने सभी आरोपों को गलत बताया है। केंद्रीय वित्त मंत्री और भाजपा नेता अरुण जेटली,
कांग्रेस पार्टी 2004 से 2014 तक सरकार में थी और उस हुकूमत की एक जो विशेषता थी कि देश में काला धन कम हो या हटे उसके लिए उस सरकार ने एक भी प्रयास नहीं किया था। उस सरकार का दूसरा फीचर ये था कि उसकी हुकूमत के दौरान भ्रष्टाचार के इतने कांड, चाहे 2G हो, कोल ब्लॉक हो, अगस्ता वेस्टलैंड डील हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एक के बाद एक गति में वो भ्रष्टाचार के कांड होते रहे। इसलिए ये कोई बहुत हैरानी का विषय नहीं है कि जो भ्रष्टाचार के विरोध एक अभियान छेड़ा है सरकार ने, कांग्रेस पार्टी उस अभियान से बहुत परेशान है और उसकी आलोचना करना और संसद में उस पर चर्चा हो इसके लिए रुकावटें पैदा करना उसका प्रयास करती है।
इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लोगों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के दादरी मंडी पहुंचे और वहां व्यापारियों और आम लोगों से बात की।
नरेंद्र मोदी जी उन उद्योगपतियों से 8 लाख रुपए नहीं 8 लाख करोड़ रुपए नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं उद्योगपतियों ने मोदी जी की मार्केटिंग की है, मोदी जी को वहां बैठाया है कुर्सी पे। तो बैंक को चालू करने के लिए मोदी जी ने आपके जेब में से पैसा निकाला है।
उधर सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि वो ज्यादा से ज्यादा कालाधन बरामद कर रही हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीबीआई ने बेंगलुरु में रिजर्व बैंक की शाखा में काम कर रहे कर्मचारी को और चित्रदुर्ग में एक हवाला ऑपरेटर को करोड़ों के नए नोट के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही कोलकाता में बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के खिलाफ 50 लाख के नोटों को बदलने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में हवाला मामले में 7 बिचौलियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने नोटबंदी के बाद नोट बदलने में कथित बेईमानी के 10 मामले दर्ज किए हैं। उधर रिजर्व बैंक के कर्मचारी की गिरफ्तारी पर बैंक के डिप्टी गवर्नर एसएस मुंद्रा ने कहा, मीडिया रिपोर्टों में एक आरबीआई कर्मचारी की गिरफ्तारी की बात आई है। वो रिजर्व बैंक के एक जूनियर कर्मचारी थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और जांच जारी है। ये थे एसएस मुंद्रा। उधर रिजर्व बैंक ने कहा है कि नोटबंदी के बाद अब तक आरबीआई करीब 22 करोड़ नोट जारी कर चुकी है और एटीएम और बैंकों के माध्यम से लोगों को 4.6 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
भारत में नोटबंदी लागू होने के बाद इसकी परेशानी भारत से बाहर भी महसूस हो रही है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी इस परेशानी से दो चार हो रहे हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि इस स्थिति से कैसे निपटें। अमेरिका के बैंक इन नोटों को नहीं बदल रहे हैं। न्यूयॉर्क में सलीम रिजवी ने इन लोगों की परेशानी का जायजा लिया। सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
अमेरिका में रहने वाले भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों को नोटबंदी के कारण भले ही घंटों लाइनों में न लगना पड़ रहा हो, मगर बहुत से लोग बैंकों के चक्कर जरूर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मायूसी हाथ लग रही है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के बहुत से लोग भारत का चक्कर अक्सर लगाते रहते हैं और अंदाजा ये है कि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास भारतीय रुपये की शक्ल में हजारों और लाखों तक की रकम भी मौजूद है, लेकिन उनके सामने समस्या ये है कि अब नोटबंदी के ऐलान के बाद 500 और 1000 रुपए के नोटों को कहां बदलने जाएं। न्यूयॉर्क के पकीप्सी इलाके में रहने वाले भारतीय मूल के हरविंदर सिंह मैनहट्टन की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में अपनी मां की 500 और 1000 की नोटें बदलवाने आए थे। उनकी मां भारत से उनसे मिलने आई हुई थी, लेकिन वो बैंक से मायूस होकर लौटे। हरविंदर सिंह बताते हैं,
मेरी मदर टूरिस्ट वीजा पे इधर आई हुई हैं, उनके पास थोड़ी इंडियन करेंसी थी गुजारे लायक, तो वो अब 6 महीने बाद जाएंगे इंडिया, तब तक तो सब कुछ बंद हो जाएगा, इसलिए मैं इधर आया था ढूंढ के SBI ब्रांच, बट दे सेड कि हम चेंज नहीं करते, हमारे लिए तो वेस्ट है, बेकार है, ज़्यादा नहीं 8-10 हज़ार रुपये है। इन्होंने बोला किसी के हाथ भिजवा दो, वो लोग भी खुद परेशान हैं जिनके हाथ भिजवाएंगे तो वो कैसे चेंज कराएंगे। मैं 2 घंटे की ड्राइव करके इधर ढूंढ के मैं बैंक आया तो इन्होंने साफ मना कर दिया, कोई हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकते।
हरविंदर बताते हैं कि उनके बहुत से दोस्तों को भी नोट बदलवाने हैं, लेकिन अमरीका में इसका कोई इंतजाम नहीं है। अमेरिका में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे भारतीय बैंकों की शाखाएं भारतीय रुपए लेने या देने से साफ इनकार करती हैं और नोटबंदी के सिलसिले में बैंकों में नोटिस भी लगा दिए गए हैं कि 500 और 1000 रुपए के नोटों को सिर्फ भारत में ही बदला जा सकता है। न्यूयॉर्क में रहने वाले एक भारतीय मूल के वकील आनंद आहूजा के पास कई लोग नोटबंदी के कारण उपजी परेशानी का हल भी ढूंढने आ रहे हैं। आनंद आहूजा कहते हैं,
सलाह लेने के लिए आते हैं कि जी हमारे पास पैसे हैं, किसी के पास 60 हज़ार हैं, किसी के पास 1 लाख है, ये हमारे पास हैं, उसका कैसे कर सकते हैं, आपको कुछ सलाह दीजिए। तो मेरी नज़र में कोई ऐसा नहीं आया कि कोई ऐसा सिस्टम हो कि यहाँ पे जो इंडियन बैंक्स हैं उनके यहाँ पे कोई उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो इंडियन करेंसी वो लेके कैसे करना है उनको, तो उस वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं वो बोल रहे हैं कि हम डेडलाइन जो है उसमें पहले इंडिया चक्कर लगाते हैं और वहाँ ले जाते हैं, कॉन्सुलेट में भी जाते हैं, तो उनका यही रहता है कि जी हमें कोई वहाँ पे कोई सेटिस्फैक्ट्री इस बात का कोई जवाब नहीं मिला है, तो परेशानी तो है लोगों को हो रही।
नोटबंदी के कारण उपजी समस्या के बारे में विभिन्न अमरीकी शहरों में स्थित भारतीय काउंसिल आवास से भी लोगों को कोई मदद नहीं मिल पा रही है। अभी भारत में 500 और 1000 के नोट बदलवाने के लिए समय बाकी है और इसीलिए कुछ लोग भारत जाने वाले दोस्तों और संबंधियों को नोटें भारत में बदलने के लिए दे रहे हैं। न्यूजर्सी में रहने वाले भारतीय मूल के अमरीकी जाफर मोहम्मद दिसंबर में ही भारत जा रहे हैं और उनके कई दोस्त 500 और 1000 की नोटों में हजारों रुपए भारत में बदलने के लिए दे गए हैं। जाफर मोहम्मद कहते हैं,
मिला हूँ दोस्तों से, काफी लोगों ने मुझे पैसे दिए अपने। आई हैव कलेक्टेड अबाउट मे बी 1 लाख रुपीज फ्रॉम डिफरेंट पीपल, तो अभी उनके रिश्तेदारों को ले आके देना है और कुछ और लोग प्रॉमिस किए हैं कि वो अभी नोट मुझे लाके देंगे अपने रिश्तेदारों को देने के लिए, सो दैट वो चेंज करवा ले।
500 और 1000 रुपए के नोटों को रद्द किए हुए एक महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन अब तक विदेशों में भारतीय बैंकों की ब्रांचों को कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं जिससे वो भारतीय मूल के लोगों और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की नोटों को बदलने में कोई मदद कर सके। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के विदेश मंत्री के तौर पर एक्सॉन मोबिल के सीईओ रेक्स टिलरसन को चुना है। ट्रंप ने सप्ताहांत में टिलरसन की प्रशंसा की थी और कहा था कि वो एक कारोबारी कार्यकारी से कहीं बढ़कर हैं और एक विश्वस्तरीय हस्ती हैं। न्यूयॉर्क से एक बार फिर सलीम रिजवी।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने एक्सॉन कंपनी के सीईओ रेक्स टिलरसन को अगले विदेश मंत्री के पद के लिए मनोनीत किया है। कई दिनों से इस पद पर नियुक्त किए जाने के बारे में कई नामों की चर्चा हो रही थी। टिलरसन को उस लंबी सूची में से चुना गया है जिसमें 2012 में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार मिट रोमनी और पूर्व न्यूयॉर्क मेयर रूडी जुलियानी भी शामिल थे। दो दिन पहले एक टीवी इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने टिलरसन की तारीफ करते हुए कहा था,
He's a world class player. He's in charge of, I guess, the largest company in the world.
टिलरसन विश्व स्तर के खिलाड़ी हैं, वो महान बिजनेस लीडरों में से एक हैं, वो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी के मुखिया हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी फायदे की बात यह है कि वो विश्व स्तर के कई खिलाड़ियों को जानते हैं और उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने रूस के साथ बहुत बड़े समझौते भी किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। टिलरसन के बारे में ट्रंप का ऐलान ऐसे समय में आया है कि जब अमेरिका में ये बहस गर्म है कि रूस ने अमेरिकी चुनावों में दखलंदाजी की थी। टिलरसन को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब माना जाता है और रूस के साथ दोस्ती के कारण टिलरसन को 2012 में रूसी सरकार द्वारा रूस का ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप सम्मान भी दिया जा चुका है। इसीलिए सेनेट में मंजूरी के लिए रेक्स टिलरसन को सख्त सुनवाई झेलना पड़ सकती है जिसमें उनके रूस और पुतिन के साथ संबंधों के अलावा एक्सॉन कंपनी के रूस में जारी प्रोजेक्ट्स पर भी कई सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं। टिलरसन की कंपनी एक्सॉन मोबिल को रूस में कई बड़े ठेके मिले थे, लेकिन 2014 में रूस द्वारा क्राइमिया पर कब्जा करने और यूक्रेन में दखलंदाजी के बाद अमरीका और कई पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने से टिलरसन की कंपनी को भी करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ था। टिलरसन ने अमरीका द्वारा रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने पर सवाल भी उठाए थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ नजदीकी के कारण कई डेमोक्रेट्स और खुद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सेनेटर भी टिलरसन के इस पद के लिए चुने जाने पर सवाल उठा रहे हैं। एरिजोना के रिपब्लिकन सेनेटर जॉन मैकेन ने टिलरसन के बारे में कहा,
I don't know what Mr. Tillerson's relationship with Vladimir Putin was, but I'll tell you, it is a matter of concern to me.
मुझे नहीं पता कि टिलरसन की पुतिन साहब के साथ किस किस्म के संबंध रहे हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये मेरे लिए चिंता की बात है। रूसियों के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते, लेकिन मैं इस बारे में नव निर्वाचित राष्ट्रपति को पूरा मौका दूंगा और इस बारे में और जांच की जाएगी। सेनेटर जॉन मैकेन के शब्द। टिलरसन के बारे में ये ऐलान ऐसे समय में आया है जब अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ने अपने आकलन में कहा है कि रूस की हैकिंग की वजह से रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन पर बढ़त मिली। CIA के मुताबिक चुनाव में रूसी हैकिंग का मकसद था ट्रंप को मदद पहुंचाना। टेक्सास प्रांत के विचिटा फॉल्स के रहने वाले 64 वर्षीय रेक्स टिलरसन पिछले 40 वर्षों से एक्सॉन कंपनी के साथ ही जुड़े रहे हैं। उनकी कंपनी दुनिया के 50 देशों में तेल से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स में कार्यरत रही है जिनमें रूस, इराक, वेनेजुएला और कतर शामिल हैं। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमटेक के छात्र नजीब अहमद को लापता हुए 2 महीने होने जा रहे हैं और अब तक पुलिस को उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। नजीब के लापता होने के बाद से JNU में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हैं। यूनियन का कहना है कि JNU प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर नजीब पर हमला करने वालों को बचाने का काम कर रहा है। वहीं विश्वविद्यालय के प्रशासन का कहना है कि वो इस मामले में नियमों के तहत ही कार्रवाई कर रहा है। सलमान रावी की रिपोर्ट।
नजीब अहमद के घर वालों के लिए पिछले दो महीने काफी तनाव भरे रहे हैं। दो महीनों से नजीब की माँ और उनके छोटे भाई मुजीब उत्तर प्रदेश के बदायूं से दिल्ली आकर डेरा डाले हुए हैं। वो हर रोज JNU और वसंत विहार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते हैं इस आस में कि शायद नजीब की कोई खबर उन्हें मिल जाए, मगर उनके हाथ अब तक निराशा ही लगी है। हालांकि नजीब के भाई को JNU के प्रशासन से काफी शिकायतें हैं।
वाइस चांसलर से दो बार मिले हैं, वो भी एक बार वो मिले, दूसरी बार जब गए थे तो वो थे नहीं और बहुत ही बुरा रिस्पांस रहा। अच्छी बात बोलते ही नहीं, उनकी मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। रेक्टर और प्रॉक्टर ही जो है क्या कहते हैं बात करते हैं, वो भी जबरदस्ती कुछ हो तो बाद मिलते हैं, उसके बाद फिर मिले ही नहीं। पुलिस उन लड़कों को तो कुछ किया ही नहीं, जिन लोगों ने मारा पीटा है, जिन लोगों ने बोला है कि हम गायब कर देंगे, क्या किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, वो तो एकदम वेस्ट कर रहे हैं टाइम अपना, दरगाहों पे देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, जो जिनसे कुछ मिलेगा उन लड़कों से तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक।
मुजीब अहमद का कहना है कि एक तो विश्वविद्यालय का असहयोग और ऊपर से उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। JNU के अध्यक्ष मोहित पांडे विश्वविद्यालय के प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हैं।
जिस वाइस चांसलर की मतलब जो वाइस चांसलर एक वार्डन रिपोर्ट पर रिलाई करता है लेकिन दूसरी वार्डन रिपोर्ट पर रिलाई नहीं करता है, वो लगातार इग्नोर करता है जो वार्डन रिपोर्ट कहती है कि ABP के लोगों ने नजीब के साथ ग्रुप वायलेंस किया। कहीं भी पुलिस में जो मतलब कम्युनिकेशन भी करते हैं वाइस चांसलर तो इस ग्रुप वायलेंस को नहीं रखते हैं सामने। के बाद जब खुद उनकी कमेटी प्रॉक्टर की कमेटी पा जाती है उनको दोषी ABP के लोगों को, तो उसको कैसे बदल दें वो रिपोर्ट, उसमें ज्यादा मशगूल रहते हैं वाइस चांसलर।
वहीं विश्वविद्यालय के रेक्टर चिंतामणि महापात्र पक्षपात करने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग छात्र राजनीति के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो एडमिनिस्ट्रेशन सारे स्टेप लेने के बाद अगर ये बोल रहे हैं कि VC ने कुछ नहीं कर रहा है, एडमिन ने कुछ नहीं कर रहा है, नजीब को नहीं ढूंढ रहा है, एडमिन थोड़े ढूंढेगा। एडमिन ने ये भी फैसिलिटेट किया कि जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हमारा है वो पुलिस के साथ मिलके इतने बड़े 1000 से ज्यादा एकड़ का जो जगह है जंगल है यहाँ उसको ढूंढने में भी JNU सिक्योरिटी गार्ड को लगाया गया। और हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे तरफ से ये इंस्ट्रक्शन गया कि सारे हॉस्टल में ढूंढो उसको, वो भी किया गया। तो ये इतना सारे करने के बाद अगर वो बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रहा है, सो दिस इटसेल्फ इज एक्चुअली फॉल्स इन्फॉर्मेशन।
JNU में मौजूदा हालात को लेकर संस्था के पूर्व छात्र भी चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि एक बार फिर विश्वविद्यालय की पुरानी रौनक वापस लौट जाए। JNU के पूर्व अध्यक्ष संदीप महापात्रा कहते हैं,
देखिए JNU में जिस प्रकार से अभी ये नजीब जो इंसिडेंट आ गया है, मुझे लगता है कि उसके परे देख के जाके देखना चाहिए कि कहीं ऐसे ताकत तो नहीं है JNU के अंदर या JNU के बाहर जो JNU से एक और एक रोहित वेमुला जैसा एक केस खड़ा करना चाहते थे। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि किस तरह से वहां पे राजनीति लोग करना चाहते हैं, वो चाहे छात्रों के अंदर से हो वो चाहे टीचर्स के अंदर से। जब तक लोगों को ये नहीं समझ में आता है या जब तक लोग समझ रहे हैं कि जो भी वो करेंगे वो JNU के हित के लिए अहित के लिए है तब तो ठीक है, अगर उनको खाली अपना राजनीति साधन करना है फिर भगवान ही बचाए जाएंगे।
मुजीब के लापता होने का मामला अब दिल्ली उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है जहां इसकी सुनवाई बुधवार को होनी तय की गई है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को भी मामले में अब तक की गई जांच का ब्यौरा देना होगा। नजीब के परिवार का कहना है कि अब उनकी आस सिर्फ न्यायालय पर टिकी हुई है। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अलेप्पो में सीरियाई सेना के हमले में दर्जनों बच्चे एक इमारत में फंस गए हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार अधिकारी जॉन इंग्लैंड ने कहा है कि उन्हें सीरिया में निहत्थे नागरिकों के संहार संबंधी विस्तृत रिपोर्ट मिली है। जर्मनी और फ्रांस के नेताओं ने कहा है कि वे चाहते हैं कि रूस के खिलाफ लगे प्रतिबंधों की मियाद यूक्रेन में हस्तक्षेप और मिन्स्क युद्ध विराम संधि को लागू करने में प्रगति न होने की वजह से बढ़ाई जाए। रूस ने एक्सॉन मोबिल के मुख्य कार्यकारी रेक्स टिलरसन को देश के अगले विदेश मंत्री के रूप में नामांकित करने के अमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की प्रशंसा की है। केरल के एक सिनेमाघर में राष्ट्रगान के दौरान खड़े न होने पर 12 लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। बाद में इन गिरफ्तार लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इटली की एक अदालत ने एक जहाज पर सवार कम से कम 700 प्रवासियों की मौत के लिए जहाज के कप्तान को जिम्मेदार ठहराया है और उन्हें 18 साल के कारावास की सजा सुनाई है। BBC समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की अजीत सारथी ने। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।